श्रद्धेयैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महामदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। हिंदी में ही बोलना है तो मैं अपने नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद विष्णु भक्ति प्रज्ञान के
तो गोस्वामी महाराज जी को सर्वप्रथम प्रणाम करता हूँ।
तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद विष्णु भक्ति वेदांत स्वामी महाराज नोन एज प्रभुपाद हियर, उनके चरणों में भी मैं श्रद्धापूर्वक अपनी पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ।
तत्पश्चात में सबसे पहले अभी क्या उनका नाम अरविंद द्विवेदी जी ने त्रिवेदी जी ने बहुत ही सुंदर भारतनाट्यम दिखलाया। मैंने भारत में भी कुछ भारतनाट्यम देखा, इंग्लैंड में भी देखा, हॉलैंड में भी देखा, किंतु सचमुच में ये जिस रूप से प्रस्तुत करते हैं ये भारत की सुंदर झांकियां हैं। और जगह देखा किंतु इतनी रुचि से मैंने नहीं देखा, विशेष करके वल्लभाचार्य के उस गीतिका के ऊपर मधुराधिपते अखिलम मधुरम, कृष्ण का बोलना, कृष्ण का चलना, कृष्ण का हंसना सभी कुछ मधुर है। उनकी मैया मधुर है, उनकी गोपियां मधुर हैं, उनकी गैया मधुर है, उनकी बंसी मधुर है, उनकी चाहनी, उनकी देखना, उनके कटाक्ष, मुस्कुराना और सभी कुछ मधुर ही मधुर है। तो इसमें उन्होंने प्रस्तुत किया भारतीय नाट्य के माध्यम से। मुझे प्रसन्नता हुई कि भारत छोड़कर के यहाँ पर भी कुछ हैं कृष्ण के संबंध में ऐसे, बहुत ही सुंदर किया। और भी उन्होंने खुद राम कहो या श्याम, जग में दो हैं, इसके संबंध में उन्होंने खुद ही प्रस्तुत किया नाट्य, बहुत ही तुच्छ और प्रशंसनीय है। इसमें कोई दो राय नहीं कि राम और कृष्ण दोनों एक हैं, एक ही तत्व हैं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम और दूसरे लीला पुरुषोत्तम, दोनों एक हैं। होने पर भी जैसा भागवत कहते हैं, भागवत के अनुसार में कृष्ण ही स्वयं भगवान है, इस चीज को याद रखना पड़ेगा, कृष्ण स्वयं भगवान है। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण ही राम के रूप में आए, कृष्ण ही बराह रूप में आए, कृष्ण ही नृसिंह रूप में आए, किंतु एक चीज है, नृसिंह को यदि बेटा बनाना चाहे ये संभव नहीं, वो बेटा होकर के नहीं आएगा, उसका जन्म नहीं है। नारायण भी नहीं जन्म ले सकते, वो नहीं लेंगे। राम परब्रह्म है, ठीक है, कृष्ण ही है, किनसे वो, उनसे ये प्रार्थना करो जो मैं तुम्हारी स्त्री होकर के तुम्हारा भजन करना चाहता हूँ, आप अपनी स्त्री हमें बना लें, मुझे राधा उनकी सीता जी की सहेली बना लीजिए, हम भी उनके साथ में रहकर के आपकी सेवा करेंगे। कहें नहीं नहीं ये नहीं होगा, ये मैं नहीं दे सकता, यदि देना होगा तो कृष्ण रूप में आऊंगा तो मैं दूंगा, नहीं दे सकते। राम के रूप में हनुमान जी का चरण नहीं छू सकते, वो हनुमान के कंधे पर बैठेंगे किंतु अपने कंधे पर हनुमान को नहीं बैठाएंगे। यदि राम का कोई भक्त कहे जैसे मैं आपके कंधे पर चढ़ूंगा, अच्छा भैया चढ़ना है तो द्वारका में आना, द्वापर लीला में आना, उस समय तुमको 10 को 20 को 50 को 1 लाख को अपने कंधे पर बैठा दूंगा, अभी नहीं, ये हम नहीं करूंगा। और कृष्ण से जो कहो, लाखों आदमी कहें हम आपकी प्रिया होकर के आपका भजन कर रहे हैं, बहुत बेशक आ जाओ आ जाओ। अरे खूबिया कुबड़ी, समस्त अंगों की कुबड़ी, उसने कहा जी आपको हमें प्रिया के रूप में दर्शन, बहुत अच्छा आ जाओ आ जाओ। राम नहीं कर सकते, राम उसकी नाक और कान कटवा लिया, वो नहीं करेंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, राम वही कृष्ण है किंतु फिर भी राम राम है। कैसे राम है, वो तिल भर भी अपनी मर्यादा इधर नहीं जा सकते, हिल नहीं सकते, बंधे हुए हैं मर्यादा में। सीता को किस लिए छोड़ा, सीता जी ने क्या गलती की, सीता जी की क्या त्रुटि थी, थी कुछ त्रुटि, सीता मैया की कोई भी त्रुटि नहीं थी, तो क्यों जंगल में छोड़ दिया, एक एक बार नहीं दो दो बार छोड़ दिया क्यों। अरे किसके किसी के कहने से एक धोबी कह रहा है तो उसे हम अपनी स्त्री को छोड़ देंगे, ये तो काम अच्छा नहीं। और जिस समय छोड़ा उस समय में अयोध्यापुरी के किसी ने नहीं कहा जैसे ये राम आप क्या कर रहे हैं, अरे भले आदमी तुम ऐसा क्यों कर रहे, अपनी सीताजी को छोड़ रहे हो, कोई कहा, किसी ने नहीं कहा। अरे वशिष्ठ जी उस समय क्या कर रहे थे, कौशल्या जी क्या कर रही थी, लक्ष्मण इत्यादि कुछ ने भी नहीं कहा। इसलिए डर है, यदि आपने राम का भजन किया और थोड़ी भी मर्यादा से इधर उधर हट गए तो वो कह देंगे ये जाओ अब मत आना जीवन भर के लिए, ये बड़ी भारी डर की बात है, समझ रहे हैं ना। उसी को नहीं और किसी को भी मर्यादा से हट जाएंगे वो नहीं छू सकते, मर्यादा में अटिक रहेंगे। सीता जी को जन्म भर के लिए छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, क्या गलती थी, धोबी कह दिया बस उसकी बात मानते, आज 50 धोबी आए तो भी गांव के सभी लोग आए हम अपनी स्त्री को छोड़ देंगे, एक मुसलमान मान लिया कि हमारी स्त्री को ले गया तो हमारी स्त्री अपवित्र हो गई, हम ऐसा नहीं मानते। अभी किसी एक व्यक्ति को कृष्ण भक्त को किसी ने जबरदस्ती गोमांस खिला दिया तो कृष्ण भक्त से हट गया, हम लोग नहीं मानते, चैतन्य महाप्रभु नहीं मानते, कहते हैं क्या चैतन्य महाप्रभु, एक बार भाई कृष्ण नाम करो तो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम बस शुद्ध हो गया, जाओ जाओ और कुछ करने की जरूरत नहीं, अब तो पक्का बन गया हिंदू, ऐसा कोई उदार होगा, राम जी तो छोड़ देंगे, कृष्ण नहीं छोड़ेंगे। सारा आदमी कहता रहा है? राधा जी को भी कर रहे हैं, कृष्ण को भी कर रहे हैं, ये क्या, सारा गांव कह रहा है तुम उसे क्यों प्यार करती है, तुम उसे क्यों प्यार करते हो, तुम्हारा विवाह कहीं हुआ उसका विवाह कहीं हुआ क्यों प्यार कर रहे हो, कृष्ण छोड़ देंगे, नहीं छोड़ सकते। और यदि कृष्ण कहेंगे जैसे मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो राधा जी कहेंगे अभी तुम यहां से हट जाओ, हमारे कुंज से निकल जाओ, सीता जी नहीं कर सकती क्योंकि राधा जी जानती हैं कि हमारे प्रेम के वशीभूत हैं ये, हम इनको यहां से हटा देंगे तभी नहीं जाएंगे, ये प्रेम की परिभाषा है, ऐसा प्रेम होना चाहिए। किंतु ये भी याद रखिए प्रेम में लेना कुछ नहीं है, देना ही देना है, कुछ नहीं देना है। कृष्ण से कुछ मांगेगी भक्ति खत्म, मत मांगो, क्या वो जानते नहीं है क्या जरूरत है, कृष्ण को पता है कि नहीं, सभी उनको पता है, तो फिर उसे मांगने की क्या जरूरत। इसलिए गोपियों ने उनसे कुछ भी नहीं मांगा, इसलिए कृष्ण कहते हैं न पारे हम निरवद्ध संयुजान। और कृष्ण ने भी गोपियों से कुछ नहीं मांगा, यह है प्रेम। इसको लिए थोड़ा समय श्रीमद्भागवत से एक छोटा सा उपाख्यान मैं बतला रहा हूँ। समय तो अधिक नहीं है, अब तो 9 बजने जा रहा है। मैं तो 8:30 ही समाप्त कर देना चाहता था, तो अच्छा हुआ आप लोगों ने भारतीय नाट्य देखा। किंतु याद रखिए कुछ बातें, ये सब काम नहीं देगा, ये तो मनोरंजन है ना। इसमें आपने क्या सीखा? ऐसा नाच करना सीखा? ऐसा ही नाच करना हमारे जीवन का उद्देश्य है, इससे हम सुखी हो जाएंगे? मिला आपको क्या है? विचार कीजिए थोड़ा सा, एक मिनट के लिए कुछ आनंद से आ गया। यदि एक आदमी ऐसा ही नाच करता रहा, जब ये बूढ़े हो जाएंगे, और अभी तो थोड़े से मोटेपन आ रहा है ना, इसके बाद में कुछ दिनों के बाद में और वृद्ध हो जाएंगे, जब चल नहीं सकेंगे तो ये नाट्य काम करेगा? इसलिए कुछ बातें याद रखनी है, अपने जीवन में सुखी होना है तो कुछ बात याद रखनी होगी। याद रखो इस चीज को, जिसका जन्म हुआ है उसको जरूर मरना है, ये चीज पहले याद रखो। अभी से कभी एक मिनट के लिए मत भूलो, अभी जो जन्मा है, जातक से ही ध्रुव मृत्यु, ये गीता का पहला, जातक से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव, जिसका जन्म है उसका मृत्यु और संभावी है। कल हमने जिसको नंगी छोटी सी बच्ची देखा, आज उसको देख रहे हैं ये तो वो 50 वर्ष की बूढ़ी हो गई। हम लोग भी एक दिन सफेद बाल हो जाएंगे, केश दांत टूट जाएंगे, ये सब सौंदर्य सब गाल पिछड़ जाएगा, सौंदर्य चला जाएगा, कोई नहीं पूछेगा ना? अपना बेटा भी नहीं पूछेगा, अपनी बहू नहीं पूछेगी, कहे मर के नहीं जाता, दिन भर खांसता है, ये जरूर होना है। इसे जीवन में हम कैसे सुखी हो सकते हैं, इसके लिए विचार करना होगा ना? जरूर विचार करना होगा। एक बात याद रखो और भी, अभी जो कुछ हम कर रहे हैं सवेरे से शाम तक, विचार करके देखो मरने के साथ में ये सब साथ हमारा सामान जाएगा कि नहीं। मान लिया कि आपने $10 करोड़ पैदा किया, जाएगा साथ में? कितना डॉलर जाएगा? एक भी नहीं। फिर किस लिए? सोचो, इतना परिश्रम किस लिए? कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे साथ में जाएगा। अच्छा कहां जाएगा? जाएगा कहां, कहां जाएगा? कोई ठीक है, अरे अभी हमको टिकट लेना है, हमको जाना है, मान लिया कि ह्यूस्टन से हमको जाना है दिल्ली, तो टिकट लेकर के जाएंगे, पता है ये दिल्ली जाना है, किंतु हमको उस समय में मरने के बाद में कहां जाना है, क्या होता है, कहां से हम आ गए? कोई संसार में दुख नहीं चाहता, कोई भी नहीं, एक चींटी भी नहीं दुख चाहती है। कोई हाथ उठाए जो मैं दुख चाहता हूं? कोई? विश्व में किसी से पूछ लो, चींटी से पूछो, एक छोटे से बच्चे से पूछो, किसी से भी पूछो, कोई भी दुख नहीं चाहता। नहीं चाहता है तो इसके लिए दुख आएगा कि नहीं आएगा? जरूर आएगा, और तुम्हारे सिर पर चढ़ करके तुम्हें भोगा लेगा। बुढ़ापा कोई नहीं चाहता, बुढ़ापा आएगी कि नहीं आएगी? जरूर आएगी, तुम चाहो और ना चाहो। उस समय तुमने जो कुछ ये सब जो कुछ पैदा किया, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। जिस समय पानी तुम्हारे मुख में दिया जाएगा, उस समय में घोटना चाहेगा जो नीचे ले जाए, नीचे नहीं ले जाएगा, उस समय कौन सहायता करेगा? डॉक्टर भी नहीं कर सकते। डॉक्टर क्यों मर जाते हैं? क्यों मरते हैं? उनको क्यों ब्लड प्रेशर और सब हार्ट पेशेंट इत्यादि क्यों हो जाता है? क्यों होता है? विश्व भर के डॉक्टर भी मिलकर के एक रोगी को सदा के लिए बचा लेंगे? संभव पर नहीं। कोई भी समस्या हल नहीं होगी, वो केवल एकमात्र उसका उपाय है, दूसरा उपाय नहीं, जिसने इस विश्व का सृजन किया है, जो कि हमारा सब कुछ रेगुलेट करते हैं। ठीक समय पर सूर्य उगता है, अस्त होता है, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, उसमें लहरियां आती हैं, ये सबको जो रेगुलेट करने वाला है वो कौन है? नील आकाश के नीचे वो नहीं है, अभी हमने सुना ना, नीले आकाश के नीचे, आकाश के पीछे, अरे वो आकाश के आगे पीछे भीतर बाहर सर्वत्र है वो, और वही है कृष्ण। ये समझो, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं, वो समस्त का मूल वही है, ये विश्वास रखिए। गीता में उन्होंने खूब एकदम जोर से कहा है, नन्नत परतर किंचित एव धनंजय, हमसे बढ़कर के और कोई परतत्व नहीं, हमसे ही समस्त परतत्व, ये विश्व का सृजन संहार इत्यादि करने वाले कृष्ण के अंश के कला हैं, जो ब्रज में घरों घरों में मक्खन चोरी करता था, तरह तरह की लीलाएं करता था, जिसने गोवर्धन धारण किया, जिसको मैया ने बांधा मक्खन चोरी के लिए, यशोदा जी धमकाती हैं तुझे गोदी नहीं लूंगी, और वो गोदी में चढ़ने के लिए रोता है, वही जो छोटा सा बच्चा है, वही विश्व ब्रह्मांड का, समस्त अवतारों का, समस्त जितने देवता इत्यादि हैं सबका नियंता वही है। यदि इस जन्म में उसको थोड़ा सा याद कर लिया, हे कृष्ण आप ही हमारे जीवन के सर्वस्व हैं, और उस कृष्ण का नाम यदि लें, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, केवलम मैंने बस एकमात्र, जब प्रभु का नाम ले सकते हैं, ये आपको सुखी बनाएगा सदा के लिए। इसके अतिरिक्त, भगवान के नाम के अतिरिक्त और कोई नाम नहीं है, इसे बढ़कर के जीवन में सुख और शांति देने वाला कोई चीज नहीं, इस चीज को समझिए, गांठ बांध करके रख लीजिए। कैसे गांठ? देखो अपने, आप लोगों को तो अंचल ही नहीं है शायद, कुछ किसी किसी को अंचल है, अंचल मैंने ये स्त्रियां पहनती हैं वो अंचल है, गांठ बांध लीजिए। क्या? भगवान के नाम के बिना कोई भी जगत में सुखी और शांति से नहीं रह सकता है, इस चीज की गारंटी। आज तक न हुआ न इसका कोई उदाहरण है, इसलिए यदि सुखी होना चाहते हैं तो ये समझिए, पहले मैं भगवान का अंश हूं, ममैव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातन, मैं उन्हीं का पार्ट एंड पार्सल हूं भगवान का। कौन? कृष्ण के। बड़े दयालु हैं, उनके समान विश्व में कोई दयालु नहीं है। आप यहीं से यदि कहेंगे, हे कृष्ण मैं तुम्हारे शरण में आया, मैं आपका इटर्नल दास हूं, बस इतना ही कहना है, और क्या करना है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस एक बार यदि कह दिया, एक बार भी जीवन में कह दिया, और उसके साथ साथ में एक और बोलना पड़ेगा, आर नारी बाप, और मैं कोई बुरा कर्म नहीं करूंगा, इसके साथ साथ में बोलो, कोई भी दुराचार काम होगा वो उसको आज से मैं कान पकड़ता हूं नहीं करूंगा, और आपके शरण में आया, आपका नाम ले रहा हूं, बस ये आपको जीवन में सुखी और शांति करा देगा। इसके लाखों लाखों प्रमाण है, एक दो नहीं लाखों प्रमाण है, जीवन को बदल देता है, जीवन में सुख और शांति देगा। इसलिए मुनियों ने लाखों वर्ष तक तपस्या करके यह सत्य निर्धारित किया कि भगवान के नाम के बिना जगत में जीवों का कोई भी कल्याण नहीं है, चाहे वो लाख करे ने? लाख करे कोई। अर्थ के लिए बतलाया गया, नित्यार्थदेन वित्तेन दुर्लभेन आत्ममृत्युना, कहते हैं ये अर्थ ऐसे ही नहीं आता, दिन रात परिश्रम करने से अर्थ होता है। अर्थ आ गया, घर में है, किसी को पता लग गया कि भारतवर्ष में रहेंगे, क्या करेंगे? चोर डकैत आपको सहज ही काट करके ले करके पैसे चले जाएंगे। दिन रात जो पैसा परिश्रम करके किया है, मधुमक्खी की भांति जो उसने मधु इकट्ठा किया, और क्या करते हैं सब हंटर, उसको ले करके पीस देते हैं, मधुमक्खी को भी रस उसी में ले लेते हैं, ऐसे ही। इसलिए अर्थ के द्वारा उपार्जित कोई भी चीज सुखी नहीं करेगा, ये समझ रखिए। कभी कभी अर्थ परमार्थ को च्युत कर देता है। कैसे? वहां जाएंगे तो हमारा कुछ अर्थ व्यय हो जाएगा, नहीं जाना अच्छा है। हम इतने बड़े आदमी और वहां पर जाएंगे उनकी बात सुनने के लिए, यह तो मेरी गरिमा का विपरीत है, हमारी प्रतिष्ठा के विपरीत है। मैं इतना बड़ा आदमी होकर के, प्रधानमंत्री, अमेरिका का राष्ट्रपति होकर के, मैं एक नंग धड़ंग साधु के साथ में किस लिए जाऊंगा उनकी बात सुनने के लिए? ये सब नहीं आने देगा। अधिक यदि सौंदर्य है, यदि अधिक पैसा है, उच्च कुल में जन्म है, और विद्या खूब अधिक है तो नहीं कोई जाएगा भजन करने के लिए, जरूरत नहीं समझेगा, किंतु सबको छोड़ करके जाना पड़ेगा। इसलिए इन चीजों को जानने के लिए, जो मैं कौन हूं, विश्व ब्रह्मांड का सृजन संहार इत्यादि किसके द्वारा हो रहा है, बड़ा दयालु है, इसे उसका नाम स्मरण करना चाहिए। वो जहां भी करेंगे वो जरूर सुनेगा। इसलिए भागवत में बतलाया कि कृष्ण स्वयं भगवान होकर के बड़े दयालु हैं, इसलिए जगत में आए। गोपियों को घर में कैसी कैसी लीलाएं कर रहे हैं अद्भुत। छोटे से बालक बनकर किसी गोपी के घर में जा रहे हैं, मक्खन चुरा रहे हैं, खा रहे हैं, दूसरे बच्चों को खिला रहे हैं। किसी ने पकड़ लिया, किसी मैया ने पकड़ लिया, कहीं मैया हमको क्यों पकड़ लिया, तो तू मक्खन चुरा रहा है। अरे मैया मैंने समझा जे ये मेरा घर है, मैं क्या समझा जे ये तेरा घर है, मैं तो ये नहीं समझा, और ऐसे मुस्कुरा दिया, बस वो छूट गया हाथ और भाग गया। कभी किसी के घर में जाता है, किसी ने पकड़ लिया, क्यों पकड़ लिया मैया, तू मक्खन क्यों चुरा रहा, मक्खन नहीं चुरा रहा था, मेरा बछड़ा कहीं गुम हो गया था, मैं बछड़ा खोज रहा था, तो बछड़ा क्या घड़े में आएगा। अरे देखो ना, बस हाथ लगाया और उसमें से मार्बल पत्थर का एक छोटा सा बछड़ा जो नंद बाबा ने खेलने के लिए दिया था उसी में डाल रखा था, उसको निकाल, देखो ये मेरा बछड़ा है, इसी के खोजने के लिए आया। गोपी भी हंसने लगी, वो भी हंसने लगे। एक दिन गोपी ने उनको मक्खन निकाल करके खाते हुए देखा, गोपी ने पूछा तू ये क्या कर रहा है। अरे मैया बात ये है कि मैया ने हीरे का ये रत्न बना हुआ कंगन हमारे हाथों में पहना दिया, मुझे बहुत उससे जल रहा था, जलन मिटाने के लिए मैंने इस मक्खन में हाथ डाल दिया। अच्छा तो तेरे मुख में कैसे लग गया? अरे तो वो जो बंदर है ना, बड़े भोले भाले, वो देखते ही हमारे हाथ में और मक्खन लपक पड़े और हमारे मुख में भी लगा दिया। यशोदा जी ने कहा जा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें दंड दूंगी। सवेरे खुद ही मक्खन निकाल रही है, बड़ी अद्भुत सुंदरी है, बड़ी अद्भुत सुंदरी यशोदा जी, नहीं तो उनका बेटा इतना कैसे सुंदर होगा। खंभे में रस्सी लपट ली और उसको मंथनी में लगा दिया और हाथों से ऐसे पकड़ करके घर घर ऐसे कर रही है। उनकी कमर बड़ी पतली है, अद्भुत सुंदरी है, गला भी बड़ा बेशकीमती, बहुत सुरीला, रेशमी वस्त्र पहनी हुई है, और जब इस प्रकार से कर रही हैं तो पसीने की बूंदे मानो मोती की बूंदे टपक रही हैं, मोती टपक रहे हैं, किंतु कीर्तन करने में गान करती हुई वो कर रही हैं। ब्रज में कोई भी कोई काम करेगा तो वो ब्रज में कोई न कोई कृष्ण का कीर्तन करता हुआ करेगा, तो बस वो कीर्तन कर रही है। हाथ में सुंदर कड़े थे, वो रुनझुन बन रहे थे, और जो दधि से मंथन से जो शब्द निकल रहा था वो मानो धिक तान मृदंग बज रहा था, और एकदम तन्मय होकर के कीर्तन कर रही थी। क्या कर रही थी? गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर
धर्मा भवेति गोविंद नामो धर्मा भवेति गोविंद नामो धर्मा भवेति उदुखले संघटतंडुलांश्च संघंटयंतो मुशलै प्रमुग्धा गायन्ति गोप्य जनितानुरागा गोविंद दामो धर्मा भवेति गोविंद दामो।
एकदम तन्मय हो गई कृष्ण के अपने बच्चे की। बाल्यकाल में जो सुंदर सुंदर मधुर लीलाएं करते हैं वो हैं कौन किंतु सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। राम इत्यादि के भी मूल अंशी हैं, अवतारी हैं। आज वो बच्चे बनकर के ब्रज में कितनी सुंदर सुंदर मनोहारी लीलाओं को कर रहे हैं। किस लिए? हमारी लीलाओं को सुन करके ये जो जीव हमें भूल करके ये संसार के जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए हैं, हमारी इन लीला कथाओं का गायन करके श्रवण करके पुनः भगवान के चरणों में आ जाएंगे, अन्यथा ये नहीं आ सकते। इसलिए इस प्रकार से गायन कर रही हैं अपने बच्चे की बाल्यकाल की। इतने में कृष्ण उठे, मैया मैया कह करके रोने लगे, किंतु वो तो तन्मय थी गाने में और तदि मंथन में नहीं सुन सकी। कृष्ण धीरे धीरे किसी प्रकार से वहां गिरते पड़ते और आंखों में काजल ऐसे करते हुए रोते हुए आए। काजल बहते हुए यहां पर गंगा जमुना की धारा भी बन गई। जब निकट में आए तभी मैया ने नहीं सुना तो झट वो दंड पकड़ लिया मथनी और एक हाथ से उनके सिर पर अंचल पकड़ करके उसको ऐसे कर दिया। ये कौन है? देखा तो हमारा बेटा है, मेरा लाडला बेटा है। बस एकदम उनको गोदी में ले लिया और गोदी में लेकर के प्यार करने लगी और अपना स्तन दे दिया, दधि मंथन करना बंद कर दिया और कृष्ण बड़े आनंद के साथ में दूध पान करने लगे। अभी उनका पेट नहीं भरा था। इतने में सामने दूध रखा था आग पर और वो उलिच उलिच करके गिरने लगा आग में, उफनने लगा। किस लिए उफन रहा? इसलिए दूध कि जब मैं कृष्ण की सेवा में नहीं लगा तो हमारा जीने का काम को नहीं, मेरा जीवन व्यर्थ है। भक्त लोग ऐसा सोचते हैं, यदि मैंने कृष्ण की कोई सेवा नहीं की, हमारा जीवन, हमारा अर्थ, हमारा एनर्जी कृष्ण की सेवा में नहीं गया तो ये जीना बेकार है, कोई काम का नहीं। और यथार्थ में ऐसा है, यदि कृष्ण भजन नहीं हुआ, अपने को नहीं समझ सका कि मैं कौन हूं, ये मनुष्य शरीर पा करके, उससे दुर्भागा जगत में कोई नहीं है। आए थे हरि भजन को, आए थे हरि भजन को, ओट न लगे कपास। गुजरात के जो रहने वाले हैं वो जानते हैं वहां कपास बहुत होता है। वहां पर पहले टिकली चलती थी, अब तो मशीन बड़ी बड़ी अहमदाबाद में सैकड़ों मशीनें हो गई हैं, लाखों कारखाने हो गए हैं। पहले टिकली से सूता काट रहा जाता है, तो ओट न लगे कपास, आए थे हरि भजन। इस प्रकार से संसार में भी रम गए हैं। कृष्ण इसीलिए अपनी लीलाओं को, मधुर लीलाओं को करते हैं कि किसी प्रकार से लोगों को थोड़ी सी चेतना हो जाए। इसलिए वो गायन कर रही हैं, कृष्ण आए, कृष्ण को दूध पिला रही हैं और आंखों से आंसू प्रेम के आ रहे हैं, उनके केशों को संभला रही है और हाथ पर, उनके पीठ पर हाथ फेर रही है। तो दूध जब उफलने लगा तो दूध ये सोच रहा है कि जीवन हमारा किस काम का यदि कृष्ण की सेवा में नहीं लगा, वो मैं आग में जल करके मर जाऊंगा। यशोदा जी ने, नहीं बेटा ऐसा मत कर, ये गुरु का काम, तुम क्यों मर रहे हो? मैं सुजोग दे करके मैं अपना दूध नहीं पिलाऊंगी, तुमको पिलाऊंगी, पहले तुम्हारा मक्खन बनाऊंगी, पेड़े बनाऊंगी, बर्फी बनाऊंगी और कृष्ण को खिलाऊंगी। इसलिए गई और पानी का छींटा देकर उसे शांत कर दिया। कृष्ण क्रोध में भर गए कि हम अभी, मैंने दूध नहीं पिया और मैया ने हमें यहां पर बैठा दिया। जो 60,000 बल वाली जो पूतना अपने स्तन से नहीं हटा सकी कृष्ण को और मर गई, उसका प्राण तक पी लिया। और ये यशोदा ग्वालिन साधारण रूप से कृष्ण ने पकड़ लिया खूब जोर से, जब वो हटाने लगी अपने मुख से जोर से स्तन पकड़ लिया, बंदरों जैसे अपने हाथों से पकड़ लिया और पैरों से भी जकड़ लिया, किंतु यशोदा जी ने एक झटके में बैठ यहां और उठा करके बैठा दिया। परम ब्रह्मा समस्त शक्तिशाली हैं, किंतु भक्तों के सामने उनका कुछ नहीं चलता, बेबस हो जाते हैं। यशोदा जी के सामने उनका कुछ नहीं चला, ये प्रेम ही ऐसी चीज है। बैठा दिया और वो चली गई, दूध को उतार के आई तो देखा जैसे ये तो कहां गया और ये जो दधि भांड था उसमें कहीं से ऐसा तोड़ दिया कि ये सब निकल करके ये बह गया। कृष्ण ने सोचा कि मैया गई और हमको दूध नहीं पिलाया, इसलिए आज मैं सजा दूंगा। इसलिए दही के बर्तन को उन्होंने उल्टा देना चाहा, किंतु उल्टा नहीं, गोवर्धन को 7 दिनों तक धारण कर रखा, किंतु वो कृष्ण आज उस पात्र को जो भरा हुआ है मक्खन आदि से नहीं लुढ़का सके, तो छोटी सी लोड़ी ले ली पीसने के लिए भाप में होता है, उठाया और उसको नीचे से छेद किया, क्योंकि नीचे में पतली होती है उसकी और ऊपर में जरा मोटा होता है, इसलिए नीचे से ठुक मारा और उसमें से दूध निकल दही निकलने लगी। जब वो सब बह गई, कृष्ण ने देखा ये बहुत बहुत सुंदर, और उसके बाद में डर ये मैया मारेगी, इसलिए घर के अंदर में मक्खन था उसको देख करके और उसको उतार रहा है उखल के ऊपर में और ले रहा है, अपने खा रहा है, बंदरों को खिला रहा है, कौओं को खिला रहा है। काफी बंदर जुट गए, बंदरों को किस लिए खिला रहा है, पूर्व जन्म में हमने बंदरों को कुछ नहीं दिया, हमारे लिए सीता के लिए उन्होंने प्राण दिए किंतु मैंने कुछ नहीं किया। वो बड़े कृतज्ञ हैं, थोड़ी सी इतना करो तो वो समझते हैं कि हमारे लिए क्या नहीं कर दिया, अपना सर्वस्व कृष्ण दे देते हैं। कृष्ण के तरफ में एक पैर चलो तो लाखों पौट दौड़ करके आएंगे, ऐसे परम दयालु हैं, इसलिए बंदरों को खिला रहे हैं। काग भोसुंडी उनके वंश में जितने कौवे हैं उनको खिला रहे हैं, क्योंकि परम भक्त है। थोड़ी देर बाद मैया आई और देखा, अरे ये तो बंदरों का बंधु है, बड़ा चंचल है, इसको दंड देना चाहिए तो पीछे बिगड़ जाएगा। किसको कह रही हैं, पर ब्रह्म को। बस लड़कियां लेकर के पीछे गई और उतर करके भागा, उसके पीछे दौड़ी, जिसको जो भी लोग शुद्ध मन को करके लाखों वर्ष तक समाधि में जिनके चरणों का दर्शन नहीं कर पाते उनको पीछे से दौड़ी यशोदा गोपी पकड़ने के लिए, और कृष्ण की अपेक्षा अधिक तेजी से दौड़ करके उनको पकड़ा। इसका क्या तात्पर्य, ये तात्पर्य कृष्ण भक्तों को प्यार करते हैं और भक्त लोग कृष्ण को प्यार करते हैं, यशोदा जी कृष्ण को प्यार करती हैं और कृष्ण यशोदा जी को प्रेम करते हैं। यशोदा का कृष्ण प्रेम इतना अधिक है कि यशोदा जी को कृष्ण जितना प्यार करते हैं उससे बहुत अधिक। इसका ये तात्पर्य हुआ यशोदा जी अधिक दौड़ करके कृष्ण को पकड़ लिया, प्रेम यशोदा का कृष्ण के प्रति, कृष्ण का यशोदा के प्रति, किंतु यशोदा का कृष्ण के प्रति जो प्रेम है इतना अधिक है जो कृष्ण उसके वशीभूत हो जाते हैं, उनको पकड़ लिया, पकड़ करके बांधने लगे। हमारा विषय ये था कि वो बांधते हैं कैसे। उन्होंने कहा अच्छा तुझे मालूम भी नहीं, कहे मैया मुझे मत मार, कहे ठीक नहीं मार, लठिया फेंक दी। अभी भी कृष्ण के गालों पर और यहां पर काजल मिश्रित कृष्ण के अश्रु जो बिंद हैं वो सब सूखे हुए हैं। अभी कृष्ण अभी सुबक सुबक करके रो रहे हैं, अभिनय नहीं कर रहे, सचमुच में डर रहे हैं, भक्तों से डरते हैं, ये दिखलाने के लिए नहीं केवल। तो उस समय में जो यशोदा जी ने कहा कि घर से रस्सी लाओ इसको बांधे, पहले तो अपने सिर में जो पट डोरी थी उसको निकाला, रेशम की डोरी, और वो 12 इतनी लंबी करीब करीब 1 गज से अधिक निकाल करके बांधना चाहा। कृष्ण की कमर 12 अंगुल बस, उसमें सोने का करधनी पड़ी हुई, और रस्सी इतनी लंबी, जब रस्सी से बांधने लगी एक बार लगाया फेंटा, दो अंगुल कम पड़ गया। इसके बाद घर से रस्सी मांगी, गोपियों ने कहा जी क्या तुम इस बालक को बांधेगी, ब्रह्मा ने इसके लीलाक में बंधन नहीं लिखा, तू क्या बांधेगी, तुम सवेरे से 10 दिन तक 20 दिन तक सारा जीवन बांधो नहीं बांध सकेगी। यशोदा कहती कि है तो मेरा बेटा कोई भी हो, मैं इसे आज बांधूंगी, कल बांधूंगी, परसों बांधूंगी, रोज रोज बांधूंगी, और इसको जब तक नहीं बांधूंगी तब अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, बांध लेगी। परिश्रम से तरबतर हो गई, किंतु जितनी लंबी रस्सी जोड़ रही है रस्सी लंबी होती चली गई, 10 हाथ 20 हाथ 50 हाथ 100 हाथ बढ़ते बढ़ते रस्सी बहुत लंबी, सारे नगर की रस्सी जोड़ दी गई, किंतु दो अंगुल ही कम पड़ी और एक बार ही भी नहीं पूरा हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्यों? भगवान की बहुत सी आश्चर्य शक्ति है, योग माया है। कमर नहीं बढ़ रही, रस्सी लंबी हो रही है, तभी दो अंगुल कम। कृष्ण सोच रहे हैं मैया मुझे बांध देगी, सखा लोग हमारे द्वार पर खड़े हैं, इनके साथ में मैं कैसे खेलूंगा और उनका भी कैसे मन लगेगा। गोप की कुमारियां हमारे दर्शन करने के लिए खड़ी हैं चारों तरफ में, वो कैसे मेरा दर्शन करे। गायें दूध नहीं देती जब तक मैं नहीं जाता, अपने बछड़ों को भी दूध नहीं देती, कब देती है, जब कृष्ण चले आएंगे। कृष्ण को देखते ही अपना बछड़ा समझ करके और उनके अपने स्तनों से दूध अपने आप झरने लगता है कि बच्चों को भी नहीं देती, तो ये गायें क्या करेंगी। भैया मुझे मत बांध, बस ऐश्वर्य शक्ति उनकी जोग माया आकर ऐसा किया, कबर में भी नहीं बढ़ रही है रस्सी, बढ़ रही है किंतु दो अंगुल प्रत्येक बार कम हो रही है। जो सुधा जी के पसीने आ गए, सुधा मैं अपने बेटी को नहीं बांध सकती, हां नारायण मेरी आज लाज रखो, मेरी सहेलियां हमें हंसी उड़ाएंगी जो अपने बच्चे को नहीं बांध सकी। यही शरणागत हुई, यही साथ साथ कृपया से स्वबंधने, स्वयं कृपा से अपने आप वही पहली वाली जो रस्सी थी उसी से बंध गए, दो अंगुल पूरा हो गया। ये दो अंगुल है क्या, गुरु कोई साधन बतलाए, हरिनाम करो और संसारिक विषयों को से क्रमशः क्रमशः धीरे धीरे वैराग्य प्राप्त हो, अटैचमेंट हटाओ, कर्तव्य के लिए करो, कर्तव्य के लिए घर में तुम्हारे स्त्री बच्चे इत्यादि के साथ में जो कर्तव्य है करो, किंतु आसक्ति मत हो, और भगवान का नियमित रूप में एक प्रोसेस के द्वारा गुरु धारण करके गुरु से मंत्र इत्यादि लेकर के उनके अनुगत्य में भजन करो। ये प्रोसेस नहीं होगा, नहीं, भगवान का एक अंगुल है जो प्रोसेस अडॉप्ट नहीं करके भगवान का नियमित रूप से भजन नहीं करता है, और उस भजन को देखकर के कृष्ण का चित्त यदि पिघल नहीं गया तो नहीं बनेगा। तो पहला साधन भजन, आग सर्वत्र है, इसमें भी आग है, सर्वत्र आग है, पत्थर में भी आग है, दो पत्थर को ठुकराओ तो देखो उसमें से आग निकल आएगी, मैचिस में आग है दिखती नहीं, जरा ऐसे करो आग निकल आएगी। वैसे भगवान सर्वत्र है कृष्ण, ऐसी कोई चीज जगह नहीं है जो अंतर में बाहर में भीतर में इधर में उधर में ऊपर नीचे कहां नहीं है, किंतु साधन के द्वारा वो मिलेंगे। तो जिसने साधन नहीं किया है वैसा जो उपयुक्त साधन होना चाहिए, साधन हम कुछ कुछ करते हैं किंतु ऐसा नहीं साधन करते कठोर जिससे कि कृष्ण का चित्त पिघल जाए, ठीक से प्रोसेस से नहीं करते। इसलिए प्रोसेस के अनुसार में जो इस विषय में एक्सपर्ट हैं उनके अनुगत्य में भजन किया जाए, तब तो होगा, और नहीं चित्त इधर भी है इधर भी है, इधर सोच रहे हैं हरे कृष्ण कर रहे हैं, मन उसमें लगता है नहीं, रुचि है नहीं, उसका फल भी नहीं मिलता, इसलिए उसमें हम विश्वास नहीं कर पाए। इसलिए उचित तरीके से गुरु प्रदत्त प्रोसेस के अनुसार में यदि हमारी नाम करें, जैसे नारद जी एक बहेलिया जीवों को मारता था, ये जंगल में नारद जी पहुंचे, उनको देख करके वाल्मीकि रूपी बहेलिया वो इन पर उठाया मारने के लिए, तो इधर में क्यों आया? उन्होंने कहा भाई ये किस लिए कर रहा है पाप? इसमें तुम्हारे घर वाले भाग लेंगे, कहीं जरूर लेंगे, मैं इतना पाप करता हूं या जो कुछ करता हूं इसका फल जरूर सब लेंगे। कहे जाओ पूछो, तुम भागना चाहता है इसलिए तुम ऐसा कहते हो, हमको बांध दो। उनको बांध दिया किसी पेड़ में और क्या पूछू। स्त्री से पूछा जब मैं तुम्हारे लिए इतना जो जानवरों को मारता हूं, आदमियों को मार करके धन संपत्ति लाता हूं, इसमें तुम्हारा भी भाग रहेगा? तो नहीं, ये नहीं रहेगा, आपने मेरा हाथ पकड़ा है इसलिए इस कर्म में नहीं, किंतु अच्छा जो करेंगे उसमें हमारा भाग है, बुरा वाले में नहीं। अच्छा, पिताजी के पास में गया, पिताजी से पूछा, पिताजी ने कहा जब बचपन में तुम्हारा पालन पोषण मैंने किया है, अब ये मैं नहीं जानता कि जो तुम कहां से लाता है, तुम्हारा कर्तव्य है तुमको लाना, हमको उससे मतलब नहीं। मैया ने भी इसी तरह से कहा, सभी ने, कोई राजी नहीं हुआ। लौट करके बड़े दुखी चित्त होकर के आया, महाराज आपने जो बात कहा वो ठीक कहा। नारद जी ने कहा जो जरा ठहरो, बस पानी लिया उसके ऊपर में छिड़क दिया, वो देखा क्या जो जिन जिन लोगों को उसने मारा है वो सब तलवार लेकर के, धनुष बाण लेकर के या कोई चीज लेकर के और उसको मारने के लिए तैयार है, लाखों लाइन में लगे हुए हैं। देख करके घबरा गया, गिर गया, फिर पानी कमंडली उठा करके छिड़का, देखा ये तूने क्या किया है। अच्छा प्रभु अब मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं कैसे बचूंगा इन कष्टों से? देखो मैं जो कहता हूं राम 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 कहो, मैं तो चेष्टा करता हूं निकलता नहीं, तो लोगों को तुमने मारा मारा है तो अपना हाँ मारा है तो मारा मारा करो, मरा 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 करो, तुमने सबको मारा है तो ठीक है, मरा मरा करते मरा मरा राम 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 उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीक भय ब्रह्म के समान हो जाओ। इसी तरह से देखिए कैसे बन गया वो। गुरु जी ने कहा नारद जी ने यहां से हटना मत, खाने के लिए क्या करूंगा? अरे आ जाएगा, खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें भूख नहीं लगेगी, प्यास पानी की भी जो तुमको जरूरत नहीं होगी, यदि होगा तो तुम्हारे पास में सब आ जाएगा, तुम विश्वास करके करो। 7000 वर्ष तक एक जगह बैठ करके राम 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 राम, अंत में ऐसी सिद्धि हुई कि राम तुम्हें साक्षात रूप में दर्शन किए। राम के आने के पहले पूरी रामायण लिख दी और जिसको जो कह दिया वही हो गया। तो उल्टा करने का यह यदि फल है तो सीधा करने से क्या होगा भाई? किंतु गुरु भी उन नारद के समान होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा, आपको ठग लेंगे लोग, आपके एनर्जी को ठग लेंगे, रुपए को ठग लेंगे, आपको बेवकूफ बना करके, और अंत में जैसे दूध में मक्खी पड़ जाती है ऐसे आपको हटा देंगे। असत व्यक्तियों के हाथ में सत्गुरु होना चाहिए, जो सचमुच में हमारे हृदय को निर्मल बना करके कृष्ण के चरणों में भक्ति दे दे, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं संसारी, बस वही यही चाहता है कि शुद्ध अपना हृदय दे दो, काम दे दो, सुनो और इस काम को, उसको किसी जगत की चीज की जरूरत क्या है? सुखदेव गोस्वामी को रुपया दो तो लेंगे ना, नारद जी को देगा तो लेंगे, उससे कोटि कोटि चीजें उनके अंदर में पड़ी हुई हैं, हरिनाम एक चिंतामणि है जिसके द्वारा जो चाहे वो हो सकता है। तो ये एक अंगुल है साधन भजन, अपना साधन भजन नहीं करेगा सुखी नहीं हो सके और कृष्ण का दर्शन भी नहीं मिलेगा, उनकी सेवा भी नहीं होगी, और दूसरा है हमारे साधन भजन से भगवान का चित्त द्रवित हो जाए, जैसे ध्रुव को देखा तपस्या करते भगवान जी आकर के दर्शन दिया, प्रहलाद जी को दर्शन दिया, ऐसे एक बद्ध होकर के दृढ़ता के साथ में भगवान का भजन करेंगे, उसको देख करके भगवान का दया पिघल जाएंगे वो दया से, ये भगवान की दया और अपना साधन ये दोनों साथ चलेगा। जैसे एक बंदर अपनी मैया को पकड़ लेता है, मैया कुछ नहीं करती, वो यहां से कूद करके उधर जाएगी और बंदर का बच्चा जोर से पकड़ा रहेगा, ये अपना साधन है, ऐसे हम साधन करें। और बिल्ली का बच्चा क्या करता है? म्याऊं म्याऊं करेगा, रोएगा, कहीं नहीं जाएगा, और बिल्ली अपने बच्चे को मुख से पकड़ करके यहां से वहां ले जाएगी, यह है भगवान की कृपा। दोनों साथ होना चाहिए, बिल्ली बनने से भी काम नहीं चलेगा, बंदर बनने से भी। हम अपने साधन से भगवान को पालेंगे ये कभी नहीं हो सकता, भगवान की कृपा से भगवान को कोई जान सकता है। और दूसरी बात, साधन नहीं होगा और केवल भगवान की कृपा से ही हो जाएगा ये भी नहीं होगा, साधन भी करना पड़ेगा। एक आदमी कुएं में गिर गया, रस्सी डालो कह जो पकड़ लो, वो नहीं पकड़ता है तो मरे, आप पकड़ लेगा तो ऊपर से हम खींच लेंगे। ऐसे भगवान की कृपा सर्वत्र है, उसकी अनुभूति होनी चाहिए। कृपालु नहीं होते तो हमें मनुष्य शरीर क्यों दिया, गधे कुकर क्यों नहीं बना दिया, आंख दिया सुंदर, इंद्रिय दिया कितना सुंदर, चेहरा दिमाग दिया, ऐसा किसी को नहीं दिया, इसलिए दिया कि हमारा भजन करेगा। इसलिए आप लोग सब कुछ कीजिए, संसार में रहिए, किंतु खान पान जरा ठीक रखिए, तामसिक आहार नहीं हो, मांस मछली शराब इत्यादि, प्याज लहसुन इत्यादि गंदी चीजें जिससे कि हृदय में हृदय अपवित्र हो जाता, ऐसा नहीं। शुद्ध खान पान हो, विचार हो, दूसरे के प्रति दया हो, ये सब गुण होना चाहिए, और भगवान का स्मरण करें तो भगवान की कृपा हो। एक भगवान की कृपा एक अंगुल, और दूसरा अपना साधन भजन, दोनों साथ साथ में होने से साथ ही साथ भगवान वशीभूत हो जाएंगे, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। यही उस लीला का शिक्षा है। इसलिए आज ही से यदि सुखी रहना चाहते हैं जीवन में, तो जो अर्थ कमा रहे हैं, संग्रह कर रहे हैं, जो सब कुछ संग्रह कर रहे हैं, इसके प्रति भरोसा छोड़िए। ये जीवन निर्वाह के लिए तो ये जरूरी है, ये तो हो जाएगा। हवा के लिए जो व्यवस्था कर रहे हैं, कंपनी आपसे पैसा ले लेगी, किंतु जो शुद्ध रूप में वायु से हम जिसे जीवित रहे हैं, उसके लिए कितना पैसा देते हैं। आपने म्युनिसिपैलिटी में कोई घर बनाया तो वो तो म्युनिसिपैलिटी टैक्स ले लेगी,